ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने डीटीसी की नई पॉलिसी बनाई, कहा दिल्ली परिवहन निगम में संविदा पर तैनात ड्राइवरों और कंडक्टरों को नियमित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के निकट जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न, और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधर कर मध्यम श्रेणी में पहुंची। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल से 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास महिलाओं को विशेषज्ञता प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले 3 वर्ष के लिए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा।
साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है।
प्रधानमंत्री ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखी। 495 एकड़ में फैले इस परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत से की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बागवानी महाविद्यालय और बागवानी के 10 क्षेत्रों से संबंधित 5 विद्यालय होंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान के लिए काम करेगा। राजधानी में काफी समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे दिल्ली परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिल्ली सरकार ने उन्हें मान लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि डीटीसी में संविदा पर तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को नियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इस प्रस्ताव को उनकी सरकार पारित कर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने डीटीसी की नई पॉलिसी बनाई है, इसके अंतर्गत अब ड्राइवर और कंडक्टर की उनके नजदीकी बस डिपो पर ही ड्यूटी लगाई जाएगी।
एक नई पॉलिसी डीटीसी द्वारा सभी डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए ऑनलाइन लिस्ट निकाली जाएगी, उनको नियरेस्ट अपने घर के पास पोस्टिंग देने की।
मुख्यमंत्री आतिशी ने आज त्यागराज स्टेडियम में 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किया। इस वर्ष इन खेलों की मेजबानी दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय कर रहा है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य बोर्डों सहित देश भर की कुल 40 इकाइयों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश रही है कि विद्यार्थियों को सदैव बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के जाने माने खिलाड़ियों की उपलब्धियों से भी छात्रों को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भविष्य में आप सब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। इस सूची में पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सूची के अनुसार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी पुरानी सीट पटपड़गंज के बजाय जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए शिक्षाविद अवध ओझा को पार्टी ने पटपड़गंज सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा मुस्तफाबाद सीट के लिए आदिल अहमद खान, नरेला सीट से दिनेश भारद्वाज और कृष्णानगर सीट पर विकास बग्गा चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी की गई उम्मीदवारों के नामों की सूची पर भाजपा ने कड़ी टिप्पणी की है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है, इस कारण पार्टी को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को दूसरी सीट पर उतारना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के बीच आक्रोश है और यही वजह है कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों और उनके विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन किया है।
मनीष सिसोदिया की सीट बदली नहीं गई है, मनीष सिसोदिया भाग गए। केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि उनके विधायकों के खिलाफ नकारात्मक माहौल है, दिल्ली में लोग उनके काम से खुश नहीं है और भ्रष्टाचार के कारण इनका हर विधायक जनता के बीच में जाने से कतरा रहा है, इसलिए बड़ी मात्रा में ये लोग टिकट काट रहे हैं। तो निस्संदेह संदेश सीधा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, ये जनता का नारा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, आम आदमी पार्टी में बदलाव शुरू हो गया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के निकट जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इससे अगले वर्ष हवाई अड्डे के पूर्ण रूप से संचालन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद थे। एक रिपोर्ट।
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू केंजरापू ने इसमें शामिल पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जेवर हवाई अड्डा भारत में हवाई यात्रा और क्षेत्रीय संपर्क में बदलाव के लिए तैयार है। श्री नायडू ने कहा कि इस विश्वस्तरीय हवाई अड्डा से सालाना लगभग 12 लाख यात्री यात्रा कर पाएंगे। उन्होंने सड़क, रेल और मेट्रो लिंक सहित कनेक्टिविटी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और भविष्य की हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी पर चर्चा की। उन्होंने हजारों नौकरियों का सृजन करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विकास को गति देने की परियोजनाओं की अपार संभावनाओं का भी उल्लेख किया। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने अपने बयान में कहा कि परीक्षण से हवाई अड्डे की नेविगेशनल प्रणाली और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की सटीकता और कार्यक्षमता की पुष्टि हुई। यह हवाई अड्डा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देश विदेश के अन्य शहरों से जोड़ेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का पुस्तकायन पुस्तक मेला शहर के मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन परिसर में चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुस्तक प्रेमी इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मनपसंद पुस्तकों की खरीदारी कर रहे हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री
तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में बच्चे, युवा और बुजुर्गों की काफी चहल पहल देखी जा रही है। विभिन्न प्रकाशनों द्वारा अलग अलग भाषाओं और लेखकों की किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं। इस मेले में हिंदी, मैथिली, असमिया, डोगरी, बोडो, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाएं में लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेले में आए गौतम चौबे ने बताया कि साहित्य अकादमी का स्टॉल उन्हें सर्वोपरि लगा।
जो पुस्तकें हैं वो इंसान का सच्चा साथी है और इन्हीं के सहारे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने करीब सारे स्टॉल देखे जिसमें साहित्य अकादमी का स्टॉल सबसे बढ़िया था। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट का स्टॉल भी बहुत बढ़िया है, पब्लिकेशन डिवीजन का भी स्टॉल भी उत्कृष्ट है।
वहीं अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने पहुंची एक छात्रा ने मेले को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं।
इट वाज अ वेरी यू नो जॉयफुल एंड एडवेंचरस फॉर अस। हमें काफी ऑथर्स जो हमें पता भी नहीं था कि ये ऑथर्स भी होते हैं, इनकी इतनी अच्छी बुक पब्लिश हुई है, सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई रियली एंजॉयड इट। वाज लाइक अ सोलफुल, वी गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड एक्नॉलेज, सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू कम हियर।
इस पुस्तक मेले में पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए पुस्तक प्रेमियों और लेखक के बीच संवाद आधारित कई सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अलावा हिंदी कवि सम्मेलन, युवा साहित्य, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, लघु कथा वाचन जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक प्रेमी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक इस मेले में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रसार भारती सचिवालय ने आज नई दिल्ली में अपने कार्यालय में राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में हिंदी माह के अंतर्गत सितंबर और अक्टूबर महीने में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं और गोष्ठियां शामिल थीं। इनमें प्रसार भारती के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विजेताओं को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हिंदी सभी भारतीयों को अपनी संस्कृति, इतिहास और विरासत से जोड़ती है।
देश के लगभग 40% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारे को हमारी संस्कृति से, हमारे को हमारे इतिहास से, हमारे को हमारे विरासत से जोड़ती है। आप अपनी भाषा भी सीखिए लेकिन उसके साथ साथ हिंदी भी सीखिए, क्योंकि हिंदी एक पुल की तरह काम करती है।
प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि राजभाषा का प्रसार और प्रचार सबका नैतिक दायित्व है,
तो इसीलिए राजभाषा के प्रचार, राजभाषा के विस्तार का काम हम लोगों को केवल एक कानूनी या सरकारी दायित्व समझकर ना करके बजाय ये जरूरी है कि हम उसको अपने देश की प्रगति के विषय से जोड़ करके हमेशा देखें।
इस समारोह में आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। दिल्ली के महापौर महेश कुमार ने आज शाहदरा दक्षिणी जोन में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कल्याणपुरी की स्थानीय पार्षद बंटी गौतम और घड़ौली वार्ड की पार्षद प्रियंका गौतम, उपायुक्त अंशुल सिरोही और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। यह दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी। ये विषय इस बात पर बल देता है कि मानवाधिकार केवल आकांक्षी ही नहीं बल्कि व्यक्तियों और समुदायों को बेहतर भविष्य के लिए सशक्त बनाने का व्यवहारिक साधन भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। इसमें राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानूनों के अंतर्गत शामिल करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को राजधानी की महेंद्र पार्क इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5.5 किलोग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता का गांजा जब्त किया। इसके अलावा एक अन्य मामले में पुलिस ने बाहरी दिल्ली क्षेत्र से 2.5 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन भी जब्त की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज सवेरे ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने बताया कि ईमेल मिलते ही पुलिस की टीम सभी जगह पहुंच गई। उन्होंने सभी स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। श्री त्यागी ने कहा कि पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगा रही है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास आज दोपहर एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। अग्निशमन विभाग की 11 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। विभाग ने बताया कि हादसे में किसी की जान की नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल देर रात हल्की बूंदाबांदी से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ। दिल्ली में आज शाम 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 181 दर्ज किया गया, जो वायु की औसत गुणवत्ता को दर्शाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी की कई क्षेत्रों में भी AQI के स्तर में सुधार हुआ है, जिससे शहर की वायु बेहतर हुई है। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में सवेरे और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने DTC की नई पॉलिसी बनाई, कहा दिल्ली परिवहन निगम में संविदा पर तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को नियमित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से सटे जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधर कर मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।